नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं सुनीता।
दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 30 नवंबर का अंक। श्रोताओ, वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर हैं हम। आज भारत के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राष्ट्र का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हर सेक्टर में नई संभावनाएं बना रहा है। लेकिन सुनीता, कभी सोचा है कि विकसित भारत की इन सिद्धियों के वाहक आखिर कौन होंगे?
बेशक, वो होंगे आज के बच्चे। बच्चे राष्ट्र के गहने हैं, उसका भविष्य है। वे जैसे ज्ञान और संस्कार ग्रहण करेंगे, वैसा ही भारत का भविष्य बनेगा। अगर बच्चे स्वस्थ शिक्षित होंगे, संस्कृति में रचे बसे होंगे, विज्ञान में प्रवीण होंगे, तो वे भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में आगे ले जा सकते हैं। बीते 11 वर्षों में नीतियों, योजनाओं और अभियानों के जरिए बच्चों को नए भारत का स्वप्न दृष्टा बनाने और उसे ज्ञान प्राक्रम से युक्त कर भारत को प्रकाशमान करने के लिए की गई समुचित पहल ही इस बार विश्व बाल दिवस के अवसर पर हमारी आवरण कथा बनी है।
जी हाँ, बिल्कुल, हमारी आवरण कथा विश्व बाल दिवस के अवसर पर ये बनी है। और इसके अलावा व्यक्तित्व की कड़ी में युद्ध नीति में निपुण वीरांगना झलकारी बाई फ्लैगशिप के तहत 20 नवंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नवीं वर्षगांठ, केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले, प्रधानमंत्री को मिले उपहार और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का 7वां संस्करण और रोजगार मेला सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, साथ ही पत्रिका के इनसाइड पेज पर, मन की बात और बैक कवर पर 24 नवंबर 2025 को वीर लचित बरफुकन की 403वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र का नमन, इस पर विशेष सामग्री को समाहित किया गया है।
करीब 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने 8वां केंद्रीय वेतन आयोग किन किन विषयों पर विचार करेगा और सिफारिशें देगा, इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से दे दी गई है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी गई थी। आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष, अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। ये आयोग अस्थायी निकाय होगा और गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर, किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशें प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। इस हिसाब से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के सामान्यतः अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होने की उम्मीद है। वहीं अन्नदाताओं के हित में रबी सीजन के लिए उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। सब्सिडी रबी सीजन 2025-26 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर प्रदान की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में विस्तार से पढ़े जा सकते हैं।
दोस्तों, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के साथ ही भारत ने समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान लीडर्स कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री क्षमताओं में विस्तार के इसी विजन को साझा किया। भारत की विशाल तटरेखा सिर्फ प्राकृतिक संपदाओं नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं का वो सजीव कैनवस भी है जो वैश्विक समुद्री परिदृश्य में देश की समृद्धि और नेतृत्व का नया द्वार खोल रही है। दरअसल भारत के कुल व्यापार का 95% और मूल्य के लिहाज से देखें तो 70% हिस्सा समुद्री मार्गों के जरिए गुजरता है। ये बंदरगाह भारत को दुनिया भर के बाजारों से जोड़ते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भारत की आर्थिक शक्ति का प्रवाह समंदरों से होता है। भारत अब वैश्विक समुद्री परिदृश्य में खुद को मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और यही वजह है कि वर्ष 2014 के बाद भारत ने अपनी समुद्री क्षमताओं के भरपूर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास शुरू किए हैं। वर्ष 2021 में इंडिया मैरीटाइम विजन 2030 की शुरुआत भी इसी रणनीति के तहत की गई। समृद्धि की संभावनाओं से भरे इसी विजन का जिक्र पीएम मोदी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में भी किया। इस कार्यक्रम में 85 देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री क्षमता में विस्तार के लिए भारत की ओर से उठाए गए कदमों के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी बात की। जलमार्गों पर कार्गो परिवहन में 700% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी कहते हैं कि आज भारत के बंदरगाह विकासशील देशों में सबसे अधिक कुशल बंदरगाह के रूप में गिने जाते हैं। कई मामलों में ये विकसित देशों के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में भारत के वैभवशाली इतिहास और भविष्य से जुड़े विजन की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने अजंता की गुफाओं के उस चित्र का जिक्र किया है जिसमें 3 स्तंभों वाला एक जहाज दिखाई देता है। ये चित्र 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि दुनिया ने इसके सदियों बाद 3 स्तंभों वाले जहाजों का इस्तेमाल शुरू किया। भारत में बने शिप ग्लोबल ट्रेड का अहम हिस्सा हुआ करते थे। अब भारत फिर से शिप मेकिंग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छूने के लिए अपने प्रयास तेज कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें दिखाया है कि समुद्र केवल सीमाएं नहीं बल्कि अवसरों के द्वार होते हैं। आज भारत उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी पत्रिका में समाहित है।
श्रोताओ, घर वो स्थान होता है जहां सपने आकार लेते हैं, और ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने के लिए 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 20 नवंबर को 9वीं वर्षगांठ थी, जिस पर पत्रिका के वर्तमान अंक में विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब योजना का विस्तार कर दिया गया है जिससे हर पात्र परिवार को आवास मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई तो 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे घर आज सिर्फ एक योजना तक सीमित नहीं है, ये कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन, तो जल जीवन मिशन के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए गरीबों को सालों दर साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शुरुआती 2.95 करोड़ और 2 करोड़ अतिरिक्त नए आवास को मंजूरी के साथ कुल 4.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 2.83 करोड़ घर पूरे हो चुके हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण में वंचितों को प्राथमिकता की कड़ी में अगस्त 2025 तक 2,68,480 भूमिहीन लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं। वहीं 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तेज गति से मकानों का निर्माण हो इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण की नई प्रौद्योगिकियां सभी के लिए किफायती, टिकाऊ और नए घर के सपने को साकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना में 60% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और 15% अल्पसंख्यकों को मकान दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। टेक्नोलॉजी में इस योजना की पारदर्शिता बढ़ी है। आवास प्लस 2024 ऐप का उपयोग, AI अथवा ML धोखाधड़ी का पता लगाना, EKYC, आधार आधारित DBT, जियो टैग्ड फोटो और निगरानी के लिए वास्तविक समय डैशबोर्ड के इस्तेमाल से ग्रामीण और पिछड़ी आबादी को मदद मिलने में आसानी हुई एवं पारदर्शिता बढ़ी है। प्रस्तावित स्थल से लेकर निर्माण पूरा होने तक प्रत्येक चरण में जियो टैग्ड और टाइम स्टैम्प के साथ फोटो अपलोड करना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं।
दोस्तों, भारत की युवा शक्ति देश की ऊर्जा और सामर्थ्य का प्रतीक है, और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मुद्रा योजना, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे ठोस कदम उठाए। भारत की सबसे बड़ी पूंजी है उसका युवा मानव संसाधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही सोच केंद्र सरकार की नीतियों में स्पष्ट झलकती है, जहां शिक्षा, कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में हर पहल का केंद्र बिंदु देश का युवा है। एक ओर स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो वहीं रोजगार मेले और नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसी पहल उन्हें नए अवसरों से जोड़ रही हैं। केंद्र सरकार के प्रयास सिर्फ सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की गई है। इस योजना के तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जब देश की सफलताओं और विजन की बात होती है तो आने वाले समय में उसमें युवाओं की भी एक बड़ी भूमिका होगी। राष्ट्र निरंतर विकसित भारत के लक्ष्य के लिए काम कर रहा है और युवा कर्मयोगी ही इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाएंगे। रोजगार मेले के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को सशक्त कर विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए जो कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
साथियों, पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायु स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भर नया इतिहास रचा। इससे पहले वे 2023 में सुखोई 30 एमकेआई में भी उड़ान भर चुकी हैं। ऐसा कर वे भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बनी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से शक्तिशाली राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरकर राष्ट्र के गौरव में एक नया अध्याय जोड़ा है। ये उड़ान न केवल भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता का परिचायक है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक भी बना। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है। उन्होंने लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और करीब 200 किलोमीटर की दूरी तय की। उसके बाद वायुसेना स्टेशन लौट आई। विमान को 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया। राष्ट्रपति की ये उपलब्धि भी पत्रिका में शामिल है।
श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सब समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है, जिसका एक हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है response-nis@pib.gov.in। और दोस्तों, अब आप हमें दीजिए इजाजत। मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं हूं सुनीता। नमस्कार।